cocaína?
Só com o Eka, né?
Vai custo cocaína?
Cujo tachau?
Pisi ko kush na.
Assalamualaikum Samin, program hai kushto kahiye. मैं हूं आपकी मेजबान शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर हमारी नीलोफर मुगल और हमारे इंजीनियर हैं कर्टिस बाइनम. तो वैसे तो पर्चा जो है आउट कर चुकी है हमारी दोस्त बेजत जिलानी, उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन चलिए फिर भी कुछ ना कुछ सस्पेंस है. हमारे एक मेहमान कौन है तो लीजिए हमारे मेहमान की आवाज.
सर साहब को 4 साल कैद हुई थी और जो जूनियर फौजी अफसर थे उनको भी 4 साल की कैद हुई थी, जो सीनियर फौजी अफसर थे जनरल अकबर उनको 12 साल की कैद हुई थी और जो दो ब्रिगेडियर्स वगैरह थे उनको 7 साल की कैद हुई थी. मुझे 4 साल की जो है वो जूनियर था, छोटा अफसर था इस वास्ते. मगर बहरहाल वो कुछ सालों के बाद हमारा केस जनाब हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने डिफेंड किया था. तो बाद में जब वो बंगाल में चेंज आया और नई वो जुगतू फ्रंट जीती तो फैज ये सोहरावर्दी साहब लॉ मिनिस्टर बन गए गवर्नमेंट. तो फिर उन्होंने एक एमनेस्टी बिल पेश किया और उसको पास करवाया और वो 4 साल के बाद हम सब रिहा हो गए. तो हमने तो अपने 4 साल काट लिए थे, जिनके 7 और 12 साल थे उनको फायदा हुआ, हमें कोई फायदा नहीं. वहां पहुंच गए तो वहां से कभी कभार मेजरी साहब खत लिखते थे तो फैज साहब की कोई ताजा कलाम कोई गजल लिख के भेज दिया करते थे, जिसको हम बतौर तबर्रक अपने पास रख के और बार बार पढ़ते थे और खुश होते थे. और जेल से रिहाई के बाद ये है कि हर शख्स अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने में लग गया और अयाम असीरी की जो कुर्बत थी वो आजादी की बेनियाजी में तब्दील हो गई. वो सरसरी उनसे मुलाकात है गाहे गाहे महफिल गैर में गाहे सरे राहे गाहे. तो फैज साहब भी अब इस दुनिया में नहीं है, बकिया साथी भी रफ्ता रफ्ता रुखसत हो गए हैं और मैं बाकी रह गया हूँ. फैज साहब की जो यादें हैं वो यकीनन एक बहुत कीमती सरमाया हैं जो बाकिया जिंदगी भी साथ हमारे बाकी रहेंगी. और बाकी तो ये है कि कमर बांधे हुए चलने को यार सब यार बैठे हैं, बहुत बाकी गए बाकी जो है तैयार बैठे.
तो सामीन किस कदर शगुफ्ता अंदाज है पोशनी साहब का. दुआ तो हमारी है कि अल्लाह मियाँ उनको बड़ी तवील जिंदगी दे और खुश रहें और इसी तरह हमसे बातें करते रहें. अस्सलाम वालेकुम पोशनी साहब. जी ये आपकी एक तकरीब से हमने रिकॉर्डिंग ली जिसमें आप बड़ी तवील तकरीर थी आपकी, लेकिन मैंने कहा कि कुछ मुझे यही लगा आपका नुमाइंदा चीज के आपका साथ जो था और फिर आपने खुद जेल में जो एक अरसा गुजारा. तो इससे पहले कि हम पिंडी साजिश केस की जाने पाए, क्योंकि असल ये केस तो बहुत इस पे बातें भी हुई हैं, डिस्कशंस भी होते रहे हैं, तो असल बात यह है कि हम पहले तो जफर साहब को जाने, जफर उल्ला पोशनी साहब को थोड़ा सा मुख्तसरन अपनी जिंदगी के बारे में बताइए बचपन से.
मैं 1926 में अमृतसर में पैदा हुआ. अमृतसर जो अब मशरकी पंजाब जो इंडिया का पंजाब है तो वहाँ पैदा हुआ 1926 में.
अच्छा.
और बस सिग्निफिकेंट यह है कि 13 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान मैंने पास किया, 17 में बीए कर लिया, 17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में एमए का पहला साल खत्म किया. तो मैं 18 साल का था एलिजिबल हो गया आर्मी में जाने के लिए और मैंने अप्लाई कर दिया कमीशन के वास्ते सिलेक्टेड. और मैं ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल बेंगलोर चला गया जहाँ पे मुझे अपनी आर्मी की ट्रेनिंग मैंने उस जमाने में मुख्तसर हुआ करती थी क्योंकि जंग हो रही थी लंबी, आजकल 2.5 साल होती है, 10 महीने में वो ट्रेन कर देते. तो वहां से बेंगलोर से कमीशन देने के बाद कुछ अरसा मुझे उन्होंने बेंगलोर में ही उर्दू पढ़ाने पे लगा दिया अंग्रेज अफसरों को.
अच्छा.
वहां से फिर मैं मुख्तलिफ यूनिट्स में काम करता रहा और जब पाकिस्तान बनने का वक्त आया तो फिर हर एक से पूछा गया कि आपने इंडिया में रहना है या یا پاکستان کی آدمی جان کرنی ہے, ایوری ون واز گیون دی چوائس کہ آپ اپنا فیصلہ کر دیجیے. ظاہر ہے دیش کے مسلمان جو آفیسر تھے انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا, میں نے بھی کیا, چنانچہ لسٹ سے چلا گیا. لیکن اس وقت میں پونے میں تھا, وہاں پہ میں آرمی سیریل اسکول میں انسپیکٹر تھا ایز اے یگ کیپٹن. تو جس وقت پارٹیشن ہوئی, آزادی ہوئی ہے 14 اگست 1947, اس وقت 47 فیصد میں پونے میں ڈیوٹیز دے رہا تھا. پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ جو سامان تھا آدمی کا اس کا تقسیم کیا گیا. مجھے میں نے مجھے حصے کی جو سامان آیا پاکستان کا, آئی واز سپوز ٹو برنگ اٹ بیک ٹو پاکستان. اتنی ڈیلے ہو گئی کہ کشمیر میں لڑائی شروع ہو گئی, میں انڈیا میں ڈیٹین رہا پارٹیشن کے بعد, اور کافی عرصے کے بعد پھر وہاں سامان لے کے بنگلور میں ڈبل پور گیا, سامان لے کے پھر میں پاکستان بڑی مشکل سے پہنچا. یہ تو میرا بیک گراؤنڈ ہے.
اچھا تو چلیے ہم یہ اس پہ تو اب آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی, لیکن پہلے میں اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ اس پروگرام کے دوران آپ فون کر کے بات بھی کر سکتے ہیں پوشنی صاحب سے, اور ہمارا نمبر ہے 0800-777-789 یعنی 0800-777-789. میرا خیال ہے کہ ان کا ٹیلی فون جو ہے کٹ گیا. تو چلیے سامعین, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوشنی صاحب جو ہیں, شروع میں آپ نے سنا تھی جھلک کہ بہت زیادہ فیض صاحب سے ان کی قربت رہی کیونکہ جیل میں وہ ساتھ رہے, اور یہ سارے لوگ ایک ان کا بہت ہی رفاقت کا زمانہ تھا. فیض صاحب کا کلام سنواتے ہیں, بہت خوبصورت کلام ہے. تو پوشنی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے, اسی کا ایک شعر تھا اور یہ ریفلیکشن ہے فیض صاحب کی قید پر. Okay.